नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पालनाडु में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की रैली को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करके ही चीन का मुकाबला किया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन शोधन से जुड़े मुद्दे पर पूछताछ के लिए बुलाया। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। और नई दिल्ली में आज वुमन प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में पालनाडु जिले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की महारैली प्राजगनम को संबोधित करेंगे। वे दोपहर बाद लगभग 4:15 बजे गड़वरम हवाई अड्डे पहुंचेंगे और चिलाकालुरुपेट के पास बोपुड्डी जाएंगे। ये आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली चुनावी सभा होगी। राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी 13 मई को होना है। आज की रैली में एनडीए के घटक दलों तेलुगुदेशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। ये 10 वर्ष के अंतराल के बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए के घटक दलों की पहली संयुक्त जनसभा होगी। प्रधानमंत्री मोदी शाम लगभग 7 बजे गड़वरम हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा की 102 सीटों पर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 94 सीटों पर, और चौथे चरण में 23 मई को 96 सीटों पर तथा पांचवें चरण में 20 मई को 49 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को 57 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की भी घोषणा कर दी है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को आज दोपहर 3 बजे तक सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक घोषणाओं वाले होर्डिंग, पोस्टर और कटआउट हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने राज्य में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उड़न दस्तों के गौरव, इलेक्ट्रॉनिक जब्ती प्रबंधन प्रणाली के व्यापक उपयोग और सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों का समय से समाधान करने पर भी चर्चा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य में 19 अप्रैल को त्रिपुरा पश्चिम और 26 अप्रैल को त्रिपुरा पूर्व सीट के लिए मतदान होगा। राज्य में 19 अप्रैल को रामगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरजीत दत्ता के निधन से खाली हुई है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के चित्र राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से तुरंत हटाएंगे। चंडीगढ़ में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 1 जून को होगा। चुनाव अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ कई बैठकें की हैं। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन आयोग की चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है। चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 614 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 139 केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। मतदान के दिन सभी केंद्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है।
लोकमेला 2024 आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से आकाशवाणी पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर,
देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने ग्रामीण बालिकाओं को कृषि जोन दिए हैं ताकि समाज की ये धारणा टूट सके कि महिलाएं ट्रैक्टर भी नहीं चला सकती। नई दिल्ली में कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में श्री मोदी ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को 1000 ड्रोन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के लिए महिलाओं का चयन विशेष रूप से कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 वर्षों में समाज के सबसे वंचित लोगों को प्राथमिकता दी गई है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि खबरों में बने रहने के लिए नहीं बल्कि कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने में वे विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कुछ तो ही थी लेकिन आज ये संख्या लगभग 25 लाख है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कोलकाता के निजाम पैलेस कार्यालय में 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शेख शाहजहां के भाई और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले के आरोप में शाहजहां के भाई शेख आलमगीर और अन्य को गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी NIA ने पुणे के कोंधवा में ISIS जैसी आतंकी गतिविधियों से अर्जित 4 अचल संपत्तियां आज जब्त कर ली। NIA ने कहा है कि जब्त की गई संपत्तियां 11 आरोपितों से जुड़ी हैं, जिनमें से 3 फरार हैं। एजेंसी का कहना है कि इन संपत्तियों का उपयोग बम बनाने और आतंकियों को प्रशिक्षित करने और साजिश रचने के लिए किया जाता था। ये जब्ती महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अन्य हिस्सों में हमले कर आतंक फैलाने के आरोप में की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। श्री केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत बयान दर्ज कराने को भी कहा गया है। इस रिपोर्ट।
यह दूसरा मौका है जब श्री केजरीवाल को धनशोधन मामले में समन जारी किया गया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए निदेशालय उन्हें पहले ही कई समन भेज चुका है। श्री केजरीवाल निदेशालय के आज समन को गैर कानूनी कहकर टाल चुके हैं। निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में 9वीं बार समन जारी कर 21 मार्च को पेश होने को कहा है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में निदेशालय का आरोप है कि इस विभाग के एक अनुबंध में मिली रिश्वत की राशि आम आदमी पार्टी के कोष में डाल दी गई थी। पिछले महीने निदेशालय ने श्री केजरीवाल के निजी सहायक दिव्य कुमार, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। निदेशालय ने इस वर्ष जनवरी में इस मामले में मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और एक ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। समाचार कक्ष से जया भारती।
आज देश के 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी 23 राज्यों के प्रत्येक जिले में आयोजित की जा रही इस परीक्षा में करीब 37 लाख शिक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा 3 विषयों के लिए होती है। इनमें शामिल है पाठन, लेखन और संख्या ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ये परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। इस बार चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा इस परीक्षा के माध्यम से शत प्रतिशत साक्षरता की घोषणा कर सकते हैं। दत्तात्रेय होसाबले एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह चुन लिए गए हैं। उनका चयन संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने किया। श्री होसाबले का कार्यकाल वर्ष 2027 तक होगा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का 3 दिन का ये वार्षिक आयोजन नागपुर के रेशमबाग इलाके में स्मृति भवन परिसर में शुक्रवार से शुरू हुआ था। इस बैठक में संघ से जुड़े संगठनों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक मीडिया समूह के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि चीन के साथ केवल सीमा से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, बल्कि कई आर्थिक मुद्दे भी हैं। एक रिपोर्ट।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सशक्त अर्थव्यवस्था के बूते ही चीन का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से ही भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन के साथ संबंध अधिक बिगड़ गए थे, हालांकि तनाव काफी समय से बना हुआ था। चीन के साथ सैन्य स्तर की बातचीत के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सीमा पर गश्त से जुड़े कुछ मुद्दे अनसुलझे हैं, क्योंकि दोनों देशों की सेना अग्नि मोर्चे पर डटी हुई है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
भारतीय सेना की टुकड़ी सैन्य अभ्यास के लिए सेशल्स रवाना हो गई है। ये अभ्यास 18 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। दोनों देशों के बीच वर्ष 2001 से हर दूसरे वर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। इस वर्ष के आयोजन में भारत की ओर से गोरखा राइफल्स के 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं। नौसेना ने सोमालियाई लुटेरों द्वारा अपहृत मालवाहक जहाज MV रोयल को मुक्त कराकर चालक दल के 17 सदस्यों को सुरक्षित छुड़ा लिया है। सभी 35 सोमालियाई लुटेरों को हिरासत में ले लिया गया है। INS कोलकाता ने भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर अपहर्ताओं के नियंत्रण वाले इस जहाज को रुकने के लिए बाध्य किया। 40 घंटे चले अभियान के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ड्रोन, गश्ती विमान और मार्कोस प्रहार कमांडो की मदद ली गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 23 मार्च को सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे तीनों देशों के साथ आपसी संबंध बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
भारत के गुलदीप सिंह ने कल कैलिफोर्निया में पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ का रजत पदक जीता। उन्होंने ये दौड़ 27 मिनट और 41.81 सेकंड में पूरी की। गुलदीप ने 20 सेकंड कम लेते हुए 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि 41 सेकंड अधिक लेने के कारण वे पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने से चूक गए। पेरिस ओलंपिक में प्रवेश के लिए ये दौड़ 27 मिनट में पूरी होनी थी। इधर महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मेगलिंग की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 8 में से 6 मैच जीते हैं, वहीं स्तुति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अब तक अपने से 4 मैच जीते हैं।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में आज ओलावृष्टि और आंधी चलने का अनुमान है। इस क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 20 मार्च तक गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। मंगलवार को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज वर्षा हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम के तराई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। आइसलैंड के रेजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। पिछले दिसंबर से ये चौथा मौका है जब इस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। विस्फोट से भारी मात्रा में धुआं और लावा फैल गया है। इसे देखते हुए यहां के लोकप्रिय पर्यटन स्थल ब्लू लैगून सहित आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पालनाडु में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की रैली को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करके ही चीन का मुकाबला किया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन शोधन से जुड़े मुद्दे पर पूछताछ के लिए बुलाया। भारतीय एथलीट गुरवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और नई दिल्ली में आज वुमन प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।